ओम शांति। संगम युग मौजों का युग है और हम बाबा के खुश नसीब बच्चे हैं, तो जो खुश नसीब हैं वो सदा खुशी में रहने वाले होंगे। दुनिया में भी कहते हैं ना, जो भाग्यवान होते हैं वो सदा खुश रहते हैं। तो सबसे पहला भाग्य हमें मिला है, गीत सुन रहे थे ना हम, सबसे पहला भाग्य मिला है, कौन मिल गया? स्वयं भाग्य विदाता भगवान ही हमें मिल गया। और न सिर्फ बाबा मिला है, लेकिन बाबा के साथ साथ बाबा का वर्षा भी मिला है। तो हमारी खुशी का आधार, सबसे पहला आधार बाबा स्वयं है, और बाबा में ही सर्व प्राप्तियां समाई हुई हैं। इसलिए कहते हैं कि परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले उस परमेश्वर की, वो मिल गया तो और क्या चाहिए? क्या सोचते हैं, भगवान मिल गया तो सब कुछ मिल गया? या साथ साथ वो तो मिल ही गया, लेकिन ये भी तो चाहिए। तो उसमें तन मन धन संबंध चार प्राप्तियां मानी जाती हैं। तो बाबा हमें इन सब प्राप्ति संपन्न भी बनाता है, इसीलिए कहते हैं बाबा में ही व्यक्ति और वस्तु समाये हुए हैं। सारा संसार बाबा में है, इसलिए बाबा ही मेरा संसार है, ऐसा हम अनुभव कर सकते हैं। सर्व संबंधों से भी बाबा हमें अनुभव कराते हैं। बाबा पिता के रूप में हमें पालना दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। अभी भी हम शिव जयंती मनाने आए तो कितने पद्मा पदम भाग्यवान है कि स्वयं शिव बाबा के साथ हमने अवतरण मनाया, और कितना प्यार बाबा ने हमें दिया और साथ साथ गिफ्ट भी दी। सभी गिफ्ट लेकर जाएंगे ना यहाँ से, कौन से गिफ्ट मिली है जी? मेरा बाबा डायमंड गिफ्ट है बाबा की, मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा वरदान के रूप में कि अगर कुछ भी आ जाए, कोई भी बात खुशी गुम करने वाली आ जाए, दुख देने वाली आ जाए, तो कहो मेरा बाबा और बदल जाएगा, वो दुख सुख में बदल जाएगा। कितना सहज रीति से बाबा हमें पालना देते हैं, प्यार देते हैं, और साथ में शिक्षक के रूप में बाबा की हमें शिक्षाएं रोज मिलती हैं। कोई दिन भी ऐसा नहीं होता जिस दिन हमारा टीचर छुट्टी करता है, और टीचर तो फिर भी छुट्टी करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किसी ना किसी दिन छुट्टी होती है, लेकिन हमारा टीचर इतना पंचुअल है, कभी छुट्टी नहीं करता है। और बाबा ने इतना बेहद का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें दिया है। सारे राज बच्चों के सामने खोले हैं और हमें हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, जो भी प्रश्न मन में चलते हैं। लेकर आते ना बाबा के सामने प्रश्न, तो बाबा मुरली में उत्तर देता है, नहीं देता है? तो ऐसा शिक्षक है जो बिना प्रश्न पूछे सब प्रश्नों के उत्तर हमें दे देता है। सतगुरु के रूप में बाबा हमें नजर से निहाल करते हैं, हम साक्षात बाबा से मिलते हैं सामने सम्मुख। वो भाग्य है कि बाबा की दृष्टि स्वयं हम पर पड़ती है, इसीलिए कहते हैं नजर से निहाल केंदा स्वामी सतगुरु। बाबा हमारा सखा भी है, दोस्त भी है, और अपने दिल की सब बातें हम बाबा से करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं। इसलिए बाबा कहता है अपने दिल पर कोई बोझ मत रखो, किसी भी बात का बोझ मन में नहीं रखना है, किसी भी बात को मन में दबा कर नहीं रखना है। चलो किसी इंसान को नहीं कह सकते, कोई ऐसी बात होती है हम दूसरे को नहीं कह सकते, हमें लगता है अगर इनको कह दिया तो नुकसान हो जाएगा, कहीं इसने दूसरे को बता दिया तो हाँ मेरी बात फैल जाएगी। पर अगर हमने शिव बाबा को सुना दिया तो बाबा तक ही रहेगी, या बाबा भी किसी को कहता है, बाबा तक ही रहेगी। तो अपने मन को तुरंत हल्का कर लेना है। कोई बात ही हमारी खुशी को गुम करती है, मानो कोई बात हो गई, चिंता वाली बात हो गई, कोई बोझ वाली बात हो गई तो खुशी गुम हो जाती है। तो भी बाबा ने वो संबंध हमें दिया है कि हम बाबा के कमरे में जाएं और अपने सारे दिल का हाल उसे कह सकते हैं, वो शक्ति हमें मिल जाएगी। बाबा हमारा साजन भी है, बाबा हमारा बंधु भी है, तो सब कुछ, सब संसार उसमें समाया है। तो भक्ति में तो हम सिर्फ गाते थे तुम माता हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, या तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, लेकिन सचमुच भगवान हमें वो संबंधों का अनुभव करा रहा है, जिसे ढूंढा इतने समय तक वो अब सम्मुख अनुभव करा रहा है। तो कितनी नशे की बात है और कितनी खुशी की बात है। तो अगर हम इस स्मृति में भी रहते हैं और बाबा को याद करते हैं सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए, तो बाबा की याद ही सुख देने वाली है। जितना जितना हम बाबा की याद में रहते हैं उतना उतना हम स्वतः ही खुशी का और अतींद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। इसीलिए कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। किसके स्मरण से सुख मिलता है? मनुष्य आत्माओं के स्मरण से सुख मिलता है, बाबा को याद करने से सुख मिलता है। तो इसीलिए कहा अतींद्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। उस भगवान की याद का सुख क्या होता है वो हम बाबा के बच्चे जानते हैं। भले भक्ति में भी लोग याद करते हैं लेकिन सीधा संबंध नहीं है, पूरा परिचय ही नहीं है, तो बाबा का अनुभव नहीं होता। खुद करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो अनुभव उन्हें खुद नहीं होता, लेकिन हम बाबा से वो सीधा संबंध अनुभव करते हुए उस सुख का भी अनुभव करते हैं, उस खुशी का भी अनुभव करते हैं। और जो सर्व प्राप्तियां हमें बाबा से हुई हैं, तन मन धन संबंध कहते हैं, सर्व प्राप्ति है, संपन्न है तो प्रसन्न है। अगर कोई भी अप्राप्ति है जीवन में, कमी महसूस होती है, तो खुशी गायब होती है। तो तन की प्राप्ति में मनुष्य क्या चाहते हैं? तन निरोगी होना चाहिए ना, पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ तन है तो प्रसन्न है। और कोई रोग आ गया तन में, कोई बीमारी आ गई, कष्ट आ गया, दर्द हो गया, तो खुशी गायब होती है। हाँ ये क्या हो गया, पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई, कब ठीक होगी, तो दुखी होना चाहिए। लेकिन यहाँ बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है हर बात के लिए, माया की कोई भी परीक्षा आती है, कोई भी पेपर आता है, कोई भी हिसाब किताब हमारे सामने आता है, चाहे वो तन का हो, मन का हो, धन का हो, संबंध का हो, लेकिन बाबा ने सब समाधान हमें दिए हैं। लेकिन उसे हमें यूज करना आना चाहिए। अगर उसे हमने समय पर यूज किया तो हमें सफलता मिलती है। जो शक्तियां बाबा ने हमें दी हैं उसे हमने समय पर यूज किया तो हम सफल हो जाते हैं, उस परीक्षा में पास हो जाते हैं, उस पेपर में पास हो जाते हैं। और अगर नहीं यूज किया तो फिर सफलता नहीं मिलती तो खुशी भी नहीं होती। वो छोटे छोटे पेपर हमारी खुशी को गुम कर देते हैं। इसलिए ज्ञान के स्मरण का भी महत्व है। जितना हम ज्ञान का मनन करते हैं उतना वो ज्ञान का मनन आत्मा को शक्तिशाली बनाता है और खुशी का भी अनुभव कराता है। हम सभी बाबा के बच्चे युद्ध क्षेत्र में हैं, माया से युद्ध है ना, तो जो ज्ञान की पॉइंट्स हैं वो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। अब मानो माया किसी भी विकार के रूप में आती है, आ सकती है, है ही युद्ध के मैदान में, तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हे दुश्मन मेरे सामने मत आओ। युद्ध के मैदान में कोई सैनिक ऐसा कह सकता है कि दुश्मन मेरे सामने मत आओ? तो चैलेंज ही दुश्मन के लिए होता है, लेकिन वो अपने अस्त्र शस्त्रों से पूरी तरह तैयार रहते हैं। उनका अपने शस्त्रों पर इतना अभ्यास होता है कि वो जिस समय जहां निशाना लगाएंगे वो निशाना ठीक लगेगा, और अगर निशाना ठीक नहीं लगा तो उल्टा हो जाएगा, दुश्मन निशाना लगा देगा, तो विजयी किसको बनना है? तो ऐसी स्थिति में अगर मैंने ज्ञान का मनन चिंतन किया है, मैंने ज्ञान का अभ्यास किया है, बाबा के उस ज्ञान की बात को मैंने अपना बनाया है, जिसको कहते हैं घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अगर मैंने घोटा ही नहीं है उसको, जैसे गाय जुगाली करती है तो वो जुगाली करके खाना पचता है और खून बनता है, शरीर को शक्ति मिलती है। तो ये भी ऐसे ही है, ज्ञान को बार बार स्मरण करना माना वो ज्ञान हमारी बुद्धि में समाता है, वो हमारी धारणा बनती है और तब वो समय पर प्रयोग होती है। अब मानो क्रोध का पेपर आ गया, या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये सब बातें हमारे सामने किसी ना किसी रूप में सारे दिन में आती हैं। अब गुस्सा तो छोटी छोटी बातों पर भी आ सकता है, बच्चे ने मेरी बात नहीं मानी, अब नहीं मानी, आपने एक दो बार कह दिया प्यार से, नहीं मानी, क्या करेंगे? हाँ माताएं क्या करेंगे, गुस्सा तो करेंगे ना, भाई क्या कहेंगे? तो बात तो परिस्थिति तो आएगी, माया वो चैलेंज तो हमारे सामने लाएगी, लेकिन मुझे कौन सी पॉइंट यूज करनी है? मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस विश्व में मैं शांति स्थापन करने के निमित्त हूँ, और अगर मैंने ही गुस्सा किया तो मैं क्या कार्य कर रही हूँ? मुझे विश्व परिवर्तक बनना है, और बाबा ने हमें श्रीमत दी है, मुख में मुलहरा डाल दो। जब कोई ऐसी बात होती है गुस्से वाली तो उस समय शांत रह जाना है, मुख में मुलहरा डाल दो माना मुख में कुछ चीज होती है तो बोल सकते हैं, बोल ही नहीं सकते हैं तो शांत रह गए उस समय, तो वो परिस्थिति अपने आप टल जाएगी। फिर चाहे वो बात नहीं मानी, वो चाहे उसने झूठ बोला, वो चाहे उसने आपका अपमान किया, बुरा व्यवहार किया, कई कारण हो सकते हैं जब हमें गुस्सा आता है। अब किसी ने मेरा अपमान कर दिया, मुझे फीलिंग आ गई, हमने उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर उस अपमान की बात को लेकर के उसने ऐसा कैसे बोला मुझे, और इस तरह से बोला, ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए था। सारा दिन हम सोच रहे हैं व्यर्थ संकल्पों में, और व्यर्थ संकल्पों में बुद्धि है तो खुश रहेंगे? नहीं रह सकते। और बाबा से बुद्धि हट जाती है, फीलिंग का फ्लू बाबा कहता है ना, जब फ्लू होता है तो क्या होता है? फ्लू होता है तो खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, एक तरफ अकेले में बिस्तर पर सोना अच्छा लगता है, ऐसे ही मूड ऑफ होता है तो ऐसा ही करते हैं, किसी से बात नहीं करेंगे, एकदम उदास रहेंगे, अकेले अकेले रहना। तो मैंने क्या किया, उस आत्मा से दुख को ले लिया अपने अंदर, और दुख लेने के कारण मेरी स्थिति पर माया का पूरी तरह असर होता है, मेरी खुशी गुम। और यदि वही हम समय पर अपनी शांति की शक्ति का प्रयोग कर लेते, बाबा ने कहा मानो किसी ने मेरा अपमान भी किया, तो पॉइंट क्या है, श्रीमत क्या है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। अगर उसने मेरे लिए कोई बात कही है तो जरूर वो कमी पहले कहीं मेरे अंदर है, मैं रियलाइज कर लूं अगर वो मेरी कमी है तो ठीक है, थैंक यू, हाँ आपको और ही शुक्रिया, आपने मुझे याद दिलाया, हाँ मेरे ध्यान पर लाया, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सर्वगुण संपन्न बनना है, हम पुरुषार्थी हैं। अगर वो कमी मुझे नहीं समझ में आ रही और किसी दूसरे ने वो बात मेरे लिए कह दी तो मैंने उसे स्वीकार कर लिया, वो परिवर्तन की शक्ति को मैंने उस समय प्रयोग किया और ही उसके दुख देने को मैंने सुख देने में बदल दिया। भले वो दुख देना चाहते थे मुझे, लेकिन मुझे क्या देना है, मुझे भी दुख देना है। बाबा ने क्या कहा है, सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो, ना मुझे दुख देना है और ना ही मुझे किसी से दुख लेना है। तो ये तब काम करेगा जब मैंने पहले इस पर चिंतन किया है, मनन किया है कि अगर कोई आत्मा, मानो जिस आत्मा के साथ मेरा हिसाब किताब है, सबके साथ तो नहीं होता है, कोई कोई आत्मा ही निमित्त बनती है बार बार मुझे हाँ इस तरह की फीलिंग्स में लाने के लिए, तो हम समझ लें उसको और उस आत्मा को समझ करके पहले से हम ज्ञान का मनन चिंतन करके फिर व्यवहार में आए, तो फिर उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा और ही अपनी शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ वाइब्रेशन हम उनको देंगे और उससे वो परिवर्तन हो जाएंगे। तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। आप मानो काम विकार का पेपर आ जाता है, आप कलयुगी दुनिया में रहते हैं, आ सकता है, तो उस समय मुझे कौन सी पॉइंट यूज करनी है, मैं आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं और बाबा ने मुझे क्या श्रीमत दी है, देह को देखना ही नहीं है, देह पर मेरी दृष्टि जाने ही नहीं चाहिए, हाँ वो आत्मा कैसी भी है, कितने भी वो मायावी आकर्षण करने वाले रूप मेरे सामने हो, लेकिन मेरी दृष्टि किस पर जानी चाहिए, आत्मा पर जानी चाहिए। पर मेरी ये पॉइंट काम कब करेगी, जब मैंने आत्मा या आत्मा की दृष्टि का इतना अभ्यास किया होगा, उस समय हम आत्मा देख सकेंगे, नहीं तो भले मालूम है कि मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, पवित्रता मेरा स्वधर्म है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। जैसे बाबा कहते हैं ना, ड्रामा का बिंदु लगा दो, तो बिंदु कब काम करेगा, ड्रामा का बिंदु लगेगा कब, भाई कोई ऐसी बात हो गई हाँ जिसमें मुझे लगता है कि चलो बुरा हुआ ना मेरा, लेकिन फिर भी कल्याण है, ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, कल्याण का बिंदु लगा दो, नहीं लग रहा है हाँ? क्योंकि मैंने उसका अभ्यास ही नहीं किया, प्रश्नों में चले जाएंगे, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्या मेरा ही भाग्य ऐसा है, मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों करता है, क्या हो गए, क्यों क्या कैसे, बाबा कहते हैं ना क क की भाषा में चले जाते हैं, प्रश्न चिन्ह में चले जाते हैं, विस्तार में चले जाते हैं, बिंदु नहीं लगा सकते, जानते हैं लेकिन फिर भी बिंदु नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने उस ड्रामा की पॉइंट को अपना बनाया ही नहीं, उसकी गहराई को उसके राज को मैंने समझा ही नहीं कि उसमें कल्याण कैसे है। मेरे जन्म जन्म के हिसाब किताब यही संगम युग पर खत्म होने हैं, मुझे यही कर्मातीत बनना है। ज्ञान में आने से पहले जो बातें हमारे सामने नहीं आई होंगी, बाबा कहता है ज्ञान में आने के बाद आएंगी। आप ज्ञान में नहीं आए, बिजनेस कर रहे थे, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था आपका, ज्ञान में आए और ज्ञान में आने के कुछ महीनों बाद ही आपको बिजनेस में नुकसान हो गया। अब आप क्या सोचते हैं, ज्ञान में आए तो बिजनेस और बढ़ना चाहिए, हाँ श्री बाबा मेरे साथ हैं तो मेरा बिजनेस तो और अच्छा होना चाहिए, लेकिन नुकसान क्यों हो गया मुझे, तो क्या कहेंगे, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, देखने में तो बुरा ही हुआ ना। फिर हमारे जो संबंधी हैं, संपर्क वाले हैं, उनको भी अवसर मिल जाता है। वो कहते हैं देखो हाँ, आप ब्रह्मा कुमारी इसमें गए ना, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। अगर हमने ज्ञान को गहराई से नहीं समझा तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे उनकी बातों को सुन सुन करके, और अगर हमने समझा है तो हम उनको जवाब दे सकते हैं। तो इसीलिए ज्ञान के मनन चिंतन के लिए बाबा हमें बोलता है। तो यहां भी जब कोई बीमारी आती है मानो, तो हमें कौन से पॉइंट को यूज करना है? बाबा ने कहा कि भले ही शरीर में बीमारी होती है, लेकिन अगर मन स्वस्थ है, अगर आत्मा स्वस्थ है, तो वो तन की बीमारी का दर्द सूली से कांटा हो जाता है। कर्म भोग को हम कर्म योग में बदल सकते हैं और बहुत सहज उसको समाप्त कर सकते हैं। तो छोटी मोटी बीमारियों को तो सोचने की बात ही नहीं है। आजकल इतने इलाज हैं, साइंस ने इतनी तरक्की की है, और अलग अलग पैथीज हैं, उसका इलाज लो और अपने बीमारी से मुक्त हो जाओ। और बीमारी का सबसे बड़ा कारण है तनाव, आज कहते हैं टेंशन, या हम कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा मर्ज नहीं। तो हम बाबा के बच्चे जब खुश रहते हैं तो वो जो टेंशन से होने वाली 70% बीमारियां हैं वो हमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम नहीं खुश रह पाते, भले हम बाबा के बने हैं लेकिन हम खुश नहीं रह पाते हैं, कोई ना कोई चिंता का बोझ हमारे सिर पर रहता है। माताएं सोचती हैं बेटा कहना नहीं मानता है, फिर कोई ना कोई गलत आदत में पता चलता है कि भाई बच्चे क्या करते हैं, उसकी चिंता लग जाती है। बेटी है घर में, उसकी शादी की चिंता लग जाती है, मानो अपने बिजनेस की चिंता है, कोई ना कोई बात। लेकिन बाबा ने कहा है सब कुछ बोझ मुझे दे दो, जो भी मेरा मेरा समझते हो, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मुझे करना है, मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है, किसका है? किसका है? बाबा का। तो जितना हम तेरा तेरा कहकर चलेंगे, जितना हम उसको समझेंगे मैं निमित्त हूं, ट्रस्टी हूं, बाबा करण करावन हार है, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, तो हम हल्के रहेंगे। और उसका असर हमारे मन पर नहीं है तो तन पर भी नहीं आएगा, तो उन बीमारियों से तो हम सहज ही बच जाएंगे। और मानो कभी कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो सचमुच डॉक्टरों के बस के बाहर है, जिसको असाध्य बीमारी कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी बाबा कहता है अगर आप तन से सेवा नहीं करते हो, आपको ऐसा लगता है अरे अब मैं बीमार हो गई, पुरुषार्थ कैसे करूंगी, सेवा कैसे करूंगी, और ही मुझे दूसरों से सेवा लेनी पड़ेगी, कई बार ये बात को लेकर के भी मन में बोझ होता है, संकल्प चलते हैं, खुशी गुम हो जाती है। तो बाबा ने कहा है अगर आप तन से सेवा नहीं कर सकते हो तो मन से तो कर सकते हो। अगर मन प्रसन्न है उस स्थिति में भी तो भी हम मनसा सेवा कर सकते हैं, बल्कि एक ही स्थान पर बैठे बैठे सारे विश्व की सेवा कर सकते हैं। कर्मणा सेवा करेंगे तो कुछ आत्माओं के लिए ही करेंगे, लेकिन मनसा सेवा तो सभी के लिए की जा सकती है। वाइब्रेशन तो हम पूरे विश्व में फैला सकते हैं, वातावरण को शुद्ध तो हम कहीं भी बैठे हुए कर सकते हैं, प्रकृति को हम सतो प्रधान बनाने की सेवा कर सकते हैं। तो बाबा के ज्ञान की बातों को हम यूज करें तो किसी भी परिस्थिति में हमें दुख महसूस नहीं होगा, हम अपनी खुशी को गुम नहीं करेंगे। मन के लिए बाबा ने कहा मन को सदा मन मनाभव स्थिति में रखो। और धन के लिए बाबा कहता है कई बार धन की भी खींचातान होती है ना, तो वो भी खासकर भाइयों को, वो भी खुशी गुम करने का कारण बन जाता है, क्योंकि आज का जमाना महंगाई का जमाना है और धन तो जो आवश्यकता है वो तो है ही सही। तो बाबा उसके लिए भी कहता है कि जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उनकी आवश्यकताएं सहज पूरी होंगी अगर सच्ची दिल है तो। सच्ची दिल पर साहेब राजी है, शिव बाबा राजी हैं, और अपनी हम खुद भी, बाबा के बच्चे भी अनुभवी हैं कि कोई भी हमें ऐसी आवश्यकता होती है तो हमारा संकल्प होता है और कैसे वो आवश्यकता पूरी हो जाती है, हमें बाबा से कहने की भी जरूरत नहीं होती, वो हमारे संकल्पों को भी जानता है। लेकिन ये बाबा कहता है कि ब्राह्मण जीवन में आप करोड़पति बन जाएं, अरबपति बन जाएं, लोग समझते हैं कि हम बहुत धन कमा लें, जैसे दुनिया वालों के जीवन क्या है आजकल, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ, बैंक बैलेंस बनाओ, वो समझते हैं धन ही सब कुछ है। तो आज जो भी समस्याएं हैं, इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसका सारा जड़ कहाँ है, उसकी सारी जड़ धन के पीछे है, और दुनिया वाले उसी में खुशी ढूंढते हैं। वो समझते हैं कि पद हमें मिल जाए, उससे धन मिले, या हम कहीं घूमने चले जाएं, उसमें हम पैसा खर्च करें, उससे हमें खुशी मिल जाएगी, जो चीज हम चाहते हैं, अच्छा मकान चाहते हैं, अच्छा मकान बना लिया खुश रहेंगे, एक अच्छी गाड़ी ले ली तो हम खुश रहेंगे, या जो भी आज के रोज के यूज के साधन हैं, विज्ञान के, वो सब साधन मेरे पास हैं तो हम खुश रहेंगे। उनका सारी सोच इनके पीछे है जो धन से प्राप्ति है। लेकिन जरूर खुशी मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, अगर कोई चीज मुझे मिल गई तो मुझे खुशी नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ा समय। विनाशी खुशी है जिसको बाबा कहता है, अल्पकाल की खुशी है, फिर कोई बात आई फिर दुखी हो गए। कहते ना, घूमने गए आप, बहुत एंजॉय कर रहे हैं वहां पर, बहुत खुश हैं, आनंद में हैं, और उसी समय कोई बुरी खबर मिल गई कि आपके घर में ये हो गया, मानो आपके घर में चोरी हो गई, मानो किसी ने ऐसे बता दिया, आप यहाँ बैठे हैं और किसी ने आपको बताया आपका ये नुकसान हो गया, आग लग गई या कुछ भी, खुश रहेंगे? दुनिया वाले तो नहीं रह सकते, पर हम बाबा के बच्चे हैं, रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? तो ऐसा होता है, थोड़े समय की खुशी है, कोई बात हुई, वो जो उससे खुशी मिल रही है वो खुशी उसी समय खत्म। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति आई है, नष्टो मोह सचमुच है, अगर वस्तु व्यक्ति में मोह नहीं है। कई बार बाबा कहता है आप यहाँ बैठे हो और विनाश शुरू हो जाए तो संकल्प चलेगा आपको ना, मेरा परिवार वहां है उसका क्या होगा, या जो भी, मेरा इतना धन है, मेरी इतनी ये सब कुछ, इतना संपत्ति है, उसका क्या होगा, या उस समय सिर्फ यही याद आएगा, एक बाबा दूसरा ना कोई। अंतिम पेपर ही है नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, इसका अभ्यास हमें अभी से करना है। तो जितना हमें अभी अभ्यास होगा, ये अभ्यास अंत समय काम आएगा। तो कोई भी परिस्थिति मेरी खुशी को गुम न करे। तो धन की भी बातें जो हैं, हमारी जो प्राप्ति है वो अविनाशी प्राप्ति है, अविनाशी खजाने बाबा ने दिए हैं, हम अविनाशी कमाई कर रहे हैं जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलने वाली, एक जन्म की कमाई नहीं है। हम इन छोटी छोटी चीजों के पीछे नहीं जाते हैं जो हद की दुनिया की प्राप्तियां हैं, कि मुझे भी बाबा एक मकान होना चाहिए, एक कार होनी चाहिए, आवश्यकता है तो होगा ही, लेकिन बेहद में अगर मेरी बुद्धि है तो। बाबा कहते हैं हद की इच्छाओं के पीछे जाना ऐसे है जैसे हम परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जितना परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं वो पकड़ में आती है नहीं, लेकिन अगर हम सूर्य के सम्मुख हैं, अगर रोशनी के सम्मुख हैं, तो परछाई अपने आप पीछे पीछे आती है। अगर मेरा बाबा के साथ योग है, अगर मैं निरंतर योगी हूँ, बाबा के साथ मेरा पूरा संबंध है, ये चीजें, दुनिया की प्राप्तियां अपने आप पीछे पीछे आने वाली हैं, प्रकृति अपने आप दासी हो जाती है, हमें इनके लिए सोचने की भी जरूरत नहीं है, तो उसके लिए दुखी होने की तो क्या बात है कि मेरे पास है या नहीं। और मन से भरपूर है, हाँ, बाबा कहता है अगर है तो भी यूज करो, और अगर नहीं है तो भी ये महसूस नहीं करो कि नहीं है। जो मन से भरपूर होता है वो नहीं में भी खुश होता है। हाँ, भगवान जिस हाल में हमको रखता है उस हाल में हम खुश हैं, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं, रहेंगे, रह सकते हैं खुश। हाँ, जिस हाल में भी रह रहे हैं, बाबा कहता है सूखी रोटी मिले तो भी खुश, और 36 प्रकार का भोजन मिले तो भी खुश रह सकते हैं, हर स्थिति में खुश रह सकते हैं, यही तो पेपर है। तो अगर है तो मौज से यूज करो, बाबा की याद में रह करके आराम से खाओ, नाचो, बाबा कहता है घूमो, कोई मना नहीं है, लेकिन बाबा की याद में। वो साधन मेरी साधना को प्रभावित नहीं करने चाहिए, उन साधनों के कारण मेरी साधना ही खत्म हो जाए, वो प्रभाव अगर है तो फिर वो साधन, जैसे मानो आजकल बच्चे मोबाइल यूज करते हैं ना, तरह तरह के बहुत डिजाइन वाले लेटेस्ट मॉडल के मोबाइल होते हैं, या इंटरनेट मिल गया तो सारा दिन उसके पीछे लगे हुए हैं, सारा टाइम और एनर्जी कहाँ जा रही है, बाबा की याद में बुद्धि नहीं लगेगी, बुद्धि लगी हुई है उन साधनों में। तो मेरी कमाई जमा हो रही है, बाबा की याद मुझे अविनाशी कमाई कराने वाली है, बाबा की याद में मेरे हर कदम में पदम जमा होते हैं, जो कार्य जो कर्म मैंने बाबा की याद में किया वो कदम मेरा पद्मों की कमाई जमा करने वाला है। इसीलिए बाबा कहते हैं हम बाबा के बच्चे हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। देखने में तो साधारण है, देखने में रिचेस्ट नहीं लगते हैं, देखने में तो दुनिया वालों की नजर में क्या है, ये तो बहुत साधारण आत्माएं हैं, लेकिन भगवान की नजर में हम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, क्योंकि बाबा को पता है कि अगर बाबा की याद में हमने कर्म किया है तो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इतनी कमाई नहीं कर सकते जितनी हम बाबा के बच्चे कर सकते हैं, और वो कमाई इस केवल इस जन्म के लिए नहीं लेकिन आने वाले पूरे 21 जन्मों के लिए हमारी जमा होती है। तो हमें इस सांसारिक प्राप्तियों के पीछे नहीं जाना है, लेकिन जो बाबा ने हमें अविनाशी खजाने दिए हैं उन खजानों को यूज करना है, उसको भी जमा करके नहीं रख देना है। बाबा कहते ना कई बार लोगों के पास बैंक बैलेंस होता है तो वो बैंक बैलेंस में बहुत खुश होते हैं कि मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, लेकिन समय पर उसको यूज नहीं करते हैं, सिर्फ बैलेंस देख के खुश होते हैं तो उसका लाभ भी नहीं ले सकते, अगर उसे यूज नहीं करते तो लाभ नहीं ले सकते। तो मेरे पास भी इतनी शक्तियां हैं, बाबा ने मुझे इतने गुण दिए हैं, इतना बेहद का ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, अविनाशी खजाने कौन से, ज्ञान गुण शक्तियां समय और श्वास और संकल्प। तो जितना हम इन्हें सफल करेंगे, जितना इन खजानों को यूज करेंगे उतना हमारे बढ़ते जाएंगे। यहां तक कि अगर बाबा ने हमें कोई विशेषता दी है, कोई विशेषता के कारण ही हम बाबा के बच्चे बने हैं, तो जो विशेषता बाबा ने मुझे दी है उस विशेषता को भी अगर मैं यूज करती हूं तो मेरी वो विशेषता भी बढ़ती जाएगी, और एक विशेषता अनेक विशेषताओं को लाएगी और ऐसे हम संपन्न बन जाएंगे। जैसे बाबा कहता है एक के आगे जीरो लगाओ तो 10 हो जाता है, और 10 के आगे जीरो लगाओ तो 100 हो जाता है, और 100 के आगे जीरो लगाओ तो 1000 हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। ऐसे ही बाबा के कार्य में अगर हम सफल करते हैं अपने गुणों को, शक्तियों को, विशेषताओं को, तो वो इस तरह से मल्टीप्लाई होते जाते हैं, तो हमारी खुशी उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। फिर बाबा हमें कहते हैं सच तो बिठो नच, हाँ, खुशी का आधार क्या है, सच्चाई और सफाई। सच्चे बाप को सच ही पसंद है, हाँ, क्योंकि वो सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु है, सत्यम शिवम सुंदरम है, और सतयुग की स्थापना करता है, हाँ, तो उसे झूठ, चतुराई, छल, कपट, हेरा फेरी ये सब पसंद नहीं है, और इसीलिए बाबा कहता है अगर आपसे कभी कोई ऐसी गलती हो जाती है तो बाबा को सच सच सुना दो, अपने दिल में मत रखो। सच सुनाया तो आधा उसी समय माफ हो गया और जो आधा हिसाब किताब बना बाबा उसके लिए भी शक्ति देता है हमें और आगे के लिए हम उस गलती से दूर हो जाते हैं। नहीं तो एक का 100 गुना, अगर सच नहीं सुनाया तो एक का 100 गुना ज्ञानी होने के बाद विक्रम बनता है। और अगर पाप कर्मों का बोझ इकट्ठा होता जाता है, जो भी हम विक्रम करते हैं, कोई भी विकार के वश होकर के विक्रम होता है, अगर वो बोझ इकट्ठा होता जाता है तो बोझ वाली आत्मा कभी भी उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकती, योग में ऊंची स्थिति का अनुभव नहीं कर सकती। फिर ऐसा लगेगा श्रीमत पर चल तो रहे हैं लेकिन फिर भी मन उदास रहता है, मन में खुशी नहीं है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाता है, अशांति हो जाती है। कारण कहीं ना कहीं हमने बाबा से अपने मन को साफ नहीं रखा है। फिर कई बार आज अभी संडे की मुरली में बाबा ने सच्चाई के ऊपर बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझाया। कल की ही मुरली थी तो बाबा ने कहा, कई बच्चे सोचते ना चतुराई से तो चलना पड़ता है, कलयुग का जमाना है ना, है ही झूठ का जमाना, तो थोड़ी तो चतुराई नहीं करेंगे तो सफल नहीं हो सकते। और ये भी देखते हैं कि जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं दुनिया में तो खैर झूठ वाले ही सफल होते हैं, बेईमानी वाले ही सफल होते हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार में भी कहीं कहीं हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं। फिर उसको हम युक्ति कहते हैं। तो बाबा क्या कहता है, मानो मैंने कोई युक्ति प्रयोग की और उसमें कल्याण है। मानो मैंने झूठ बोला, आपके पति ज्ञान में नहीं चलते हैं और आपको बहुत विघ्न डालते हैं और आपको बाबा को मिलने आना है, तो आप युक्ति रचते हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहीं अपने रिश्तेदारों की बात करते हैं, मैं 4 दिन के लिए वहां जा रही हूँ, और वो प्रोग्राम बना के उनको झूठ बोलकर आप आ गए, तो क्या कहेंगे, झूठ बोला, युक्ति है। लेकिन इस झूठ में आत्मा का कल्याण है, तो जो झूठ कल्याणकारी है उसके लिए बाबा मना नहीं करता है, वो शायद पुण्य कर्म है, पाप कर्म नहीं है। लेकिन अगर मेरे स्वार्थ के लिए मैंने झूठ बोला, ऐसे ही दूसरों के कल्याण के लिए भी अगर हम कहीं झूठ बोलते हैं, जैसे वो एक संत की कहानी नहीं सुनाते हैं, गाय गुजरी, उसने देखा, फिर एक कसाई आया दौड़ता दौड़ता, तो उसने उसको पूछा, तुमने देखा एक गाय, वो गाय कहाँ गई, तो उसने कहा पता नहीं, पता था उसको लेकिन कहा पता नहीं। तो यहाँ देखने में तो झूठ लग रहा है, लेकिन वो उसका पाप नहीं पुण्य है, क्योंकि उसने एक जीवन बचाया झूठ बोलकर। तो ऐसे अगर हम कोई युक्ति रचते हैं तो वो गलत नहीं है, और शुरू से अपने यज्ञ में ये चलता आया है, जब विघ्न पड़े हैं तो हम कोई ना कोई इस तरह की विधि अपना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारे वो बंधन छूटते जाते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं उनसे, जितना जितना हमारा योग बल आगे बढ़ता जाता है। लेकिन मेरे से कोई गलती हुई और मैंने अपना नाम बचाने के लिए, जैसे बच्चे लोग करते हैं ना, अपने को बचाने के लिए फटाफट झूठ बोल देते हैं, तो मैंने सोचा अगर मैंने सच बोला तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, हाँ ये मानेंगे कि इन्होंने ही गलती की है, और हमें थोड़ा अभिमान तो होता है, हम अपना नाम तो कम नहीं करना चाहते, तो अपनी गलती को साफ छुपा जाते हैं, दूसरों के ऊपर लगा देते हैं, इसने ऐसा किया ना इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो ये चतुराई बाबा को पसंद नहीं है। फिर बाबा ने मुरली में समझाया था कल कि अगर हमने यहाँ अपना नाम बचा लिया, हमारा नाम अच्छा हो गया, हम थोड़े के समय के लिए खुश हो गए कि देखो चतुराई से चले ना तो सफलता मिली, लेकिन वो सदा काल के लिए बाबा के दिल पर आपका नाम कम कर देता है, और वो आने वाली जो आपकी अविनाशी कमाई है उस खाते में लकीर लग जाती है। उस खाते में दाग लग जाता है, तो कौन सी कमाई श्रेष्ठ है? तो इसीलिए सदा हमें आपस में भी सच्चाई सफाई से चलना है। बाबा के साथ तो सच्चाई रखनी ही रखनी है, लेकिन आपस के संबंधों में भी कई बार ना हम सामने सामने किसी से बात करते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, हाँ, लेकिन अंदर में उनके लिए कुछ और सोचते हैं, जिसको आज के कलयुग की विशेषता कहते हैं। मनुष्य दो तरह का व्यवहार करता है, वो बाहर कुछ होता है और अंदर कुछ और होता है। फिर मन में उसके बारे में जो गलत सोचते हैं वो फिर जब दूसरे से मिलते हैं तो वो बातें उनको करते हैं, उनके सामने अच्छी बात कही लेकिन पीठ पीछे होते ही तुरंत। तो इसका मतलब हमारे संबंध में वो सच्चाई सफाई नहीं है। और अगर मेरे मन में उसके लिए वृत्ति खराब है तो वो वृत्ति का वाइब्रेशन जाता है। आप कितना भी अच्छा बोलो लेकिन वाइब्रेशन से उस आत्मा को समझ में आता है कि कहीं कुछ गलत है, ठीक नहीं है। अगर मेरा अंदर बाहर एक होगा तो वाइब्रेशन अच्छा जाएगा, तब उसका प्रभाव सही होगा। तो संबंधों में भी हमें सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम इतनी शुद्धता से व्यवहार में आते हैं। और फिर बाबा कहता है कि जितना हम निश्चय बुद्धि हैं बाबा पर, निश्चय बुद्धि विजयंती, तो बाबा पर पूरा निश्चय हो हमारा। और कभी कभी परिस्थितियां आती हैं तो वो हमारे निश्चय को हिलाती हैं, संशय पैदा करती हैं मन में। तो संशय अगर पैदा होता है तो संशय बुद्धि विनश्यंती, फिर मन में हलचल होती है और वो हलचल हमारी खुशी को गुम करती है। लेकिन जो परिस्थिति आई है, बाबा साथ हैं, और जब सर्वशक्तिवान भगवान साथ हैं मेरे, हाँ, तो
अब तुम्हें आना है।
महाभारत में एक एग्जाम्पल आता है कि अर्जुन को जब जयद्रथ को मारना था, उसने जब अभिमन्यु को मार दिया था, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि मुझे सूर्यास्त होने के पहले पहले जयद्रथ को मारना है। तो वो बीच में समय बहुत कम था, रात का टाइम था और अर्जुन आराम से सो रहा था, कृष्ण उसके साथी थे। तो कृष्ण चक्कर लगा रहे थे और उन्हें देखा कि इतनी गहरी नींद सो रहा है, खर्राटे ले रहा है, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसको उठाया, उन्हें कहा कि अर्जुन तुम सो रहे हो। तो बोला क्या करूं? अरे तुमको कल जयद्रथ को मारना है, तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम्हें याद नहीं है, और नहीं मारा तो क्या होगा? तो उसने कहा कि जब आप मेरे साथ हो, आप मेरी चिंता कर रहे हो, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं तो गहरी नींद में सो सकता हूँ। तो भगवान जब हमारे साथ हैं तो पूरा निश्चय हमें उसके ऊपर होना चाहिए, और हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत निश्चित विजयी बाबा के बच्चे हैं। और अगर हम स्वयं प्रसन्न रहते हैं, हम बाबा कहते हैं खुश रहो और खुशी बांटो, तो अगर हम स्वयं प्रसन्न रहने की कला सीख जाते हैं, हमारा ब्राह्मण जीवन है ही खुशी का जीवन। जैसे कहा ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है प्रसन्नता, बाबा कहते हैं प्रॉपर्टी है, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है संतुष्टता और पर्सनालिटी है प्रसन्नता। तो जितना हम संतुष्ट रहते हैं परिस्थितियों को समझकर, व्यक्तियों को समझकर, उतना ही हम प्रसन्न रहते हैं। और जो स्वयं से प्रसन्न होते हैं उससे दूसरे भी प्रसन्न होते हैं। अगर हम खुश हैं तो जो भी हमसे मिलेगा उसे क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी, अपने आप वो खुशी दूसरों तक जाती है। इसलिए कहते हैं हर्षित मूर्त आकर्षित मूर्त होते हैं। हाँ, देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो दर्शन मात्र से ही मन प्रसन्न हो जाता है। क्यों प्रसन्न हो जाता है? क्योंकि देवताएं हर्षित चित्त हैं, उनके चित्त से ही वो प्रसन्नता दिखाई देती है, वो सदा प्रसन्न रहे हैं। तो किसका यादगार है? हमारा ही यादगार है। तो जब जड़ मूर्तियां दर्शन मात्र से खुशी दे सकती हैं, तो क्या चैतन्य मूर्तियां नहीं दे सकती? तो मुझे पहले स्वयं खुश रहना है और मेरी प्रसन्नता के वाइब्रेशन फिर दूसरों तक पहुंचेंगे और उन्हें भी वो सदा खुशी देंगे। ओम शांति।